समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का अभिनंदन है आज के न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज 17 जुलाई है और दिन है बृहस्पतिवार का। आज सवेरे के आज के अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार देवेंद्र। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। Well, listeners, first, we'll give you latest national and international news, including sports updates. We'll also be providing you Metro City updates. And today, we'll explore the history as well. Today, it's 1707, as Devendra said. And first of all, we'll begin with the headlines. So, shall we begin?
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना से न केवल पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि खाद्य उपलब्ध कराने वालों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों के विकास के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। एनटीपीसी रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यमी सहायक कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए एनटीपीसी लिमिटेड को अधिक शक्ति दिए जाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कदम से अक्षय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन शहरी को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता दी जाएगी। इस वर्ष ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और अधिक जनसंख्या वाले 5 शहरों में से शीर्ष 3 स्वच्छ शहर शामिल होंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शहरी स्वच्छता और सेवा वितरण का आकलन करने के लिए एक स्मार्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है जो शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है। शगुन, स्वच्छता हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जरूरी है और हम प्रायः देखते हैं कि सभी लोग अपने घरों में स्वच्छता रखते हैं लेकिन शायद कभी सामाजिक स्थानों पर यानी सोशल प्लेसेस पर, कॉमन प्लेसेस पर हम थोड़ी चूक करते हैं। तो हमें इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और बहुत सारे शहरों को जो स्वच्छता में नंबर एक आते हैं, जैसे इंदौर का उदाहरण हम ले लें, तो मुझे लगता है कि लोग प्रेरित हो सकते हैं कि अपने शहरों को हम किस तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाए रख सकते हैं।
यस, क्लीनलीनेस शुड बी गिवन अटमोस्ट इंपोर्टेंस एट ऑल प्लेसेस, एट ऑफिस लाइक आवर ऑफिसेज एंड ऑल द प्लेसेस, इन फैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग, रोड्स इन फैक्ट। Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has announced that artificial intelligence training will be provided to 10 lakh citizens in the country free of cost, and priority will be given to village-level entrepreneurs. Mr. Vaishnav made this announcement in an event, CSC Divas, organized in New Delhi, celebrating 10 years of Digital India. The event marked a decade of transformative digital empowerment across the nation.
AI मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस AI मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है करीब 10 लाख लोगों को AI स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें 5.5 लाख VLEs अपने हैं, आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी।
Highlighting the efforts and achievements of Common Service Centres or CSC workers, Mr. Vaishnav said that village-level entrepreneurs across the country have set a remarkable example by delivering the benefits of Digital India to every citizen. He added that CSC has reached nearly 90% of villages in the country.
सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पोलावरम वन का चेरला लिंक परियोजना तथा लंबित अंतर्राज्यीय जल मुद्दों से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि दोनों राज्यों और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की ये समिति लंबित मुद्दों का मिलकर आकलन करेगी और समान तथा प्रभावी जल बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायसंगत और तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधान की सिफारिश करेगी।
An earthquake of magnitude 7.3 struck Alaska in United States last night at around 2:07 a.m. Indian time. Alaska's Earthquake Monitoring Agency said the epicenter was located 89 kilometers south of Sandpoint in Alaska. The agency further said that the shock was felt over a broad region extending as far as Anchorage and Juneau, where reported shaking was light. No injury or casualty has been reported so far. Alaska Earthquake Center Director and State Seismologist Michael West said that the strong shocks were downgrading with time and there is no warning of tsunami there.
Ji. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत जल्द पूरी हो सकती है। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और प्रस्तावित समझौता अमरीकी कंपनियों को अमरीका और इंडोनेशिया के बीच हुए व्यापार समझौते के अनुरूप भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इंडोनेशिया में पूरी पहुंच मिली हुई है और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है।
Now, Devendra, let's give our listeners the sports updates first. In women's cricket, India defeated hosts England by 4 wickets in the first ODI match at the Rose Bowl in Southampton last night. With this win, the women in blue are leading the 3-match series 1-0. Opting to bat first, England made 258 for 6 in stipulated 50 overs, with Sophia Dunkley's 83 off 92 balls for India. Kranti Gaur and Sneha Rana each bagged 2 wickets. In response, Harmanpreet Kaur-led Indian side managed to chase the score with 10 balls to spare. Deepti Sharma was declared player of the match for her unbeaten innings of 62 runs. India will now aim to clinch the series in the second ODI clash at Lord's in London on Saturday.
जी, एक और खबर खेल से जुड़ी हुई। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 महिला राष्ट्रीय टीम ने कल रात ताशकंद में खेले गए अपने दूसरे मैत्री मैच में उज्बेकिस्तान को 4-1 से आसानी से हरा दिया। मैच के आधे समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। भारत की ओर से शिबानी देवी नांग मेकम्प ने 2 गोल किए जबकि सुलांजना राउल और नेहा ने 1-1 गोल किया। उज्बेकिस्तान की ओर से शाखनोजा देकान बाइबा ने 1 मात्र गोल किया। पहला मैत्री मैच 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ था। तो ये थी देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें और अब आज सवेरे में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महानगरों से जुड़ी क्या हैं खबरें। तो बताएं शगुन, क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से खबरें?
यस ऑफ कोर्स देवेंद्र, आई विल बिगिन विद चेन्नई। The Tamil Nadu government has allowed an increase in intake at arts and science colleges by up to 20% for the 2025-26 academic year. The Minister of Higher Education, Govi Chetiyan, said that with more students waiting to gain admission to government arts and science colleges, the number of seats in state-run colleges will be allowed an increase by 20% this year. He added that aided colleges will be allowed to increase their intake by 15% and private colleges by 10%. In the government arts and science colleges, nearly 1 lakh students have been enrolled so far against 1.26 lakh seats. So now this story, the next update that I have, it is also from Chennai and it is about YD1, India's lightest active wheelchair. Well, Indian Institute of Technology Madras yesterday announced the launch of YD1, India's lightest active wheelchair and the first one, listeners, indigenously developed precision monotube rigid frame wheelchair. And this weighs just 9 kg. YD1, it is custom built for each user's body, each user's posture and the mobility needs. Made with aerospace grade materials, it offers strength, efficiency and also easy handling, matching global standards, but at a much lower cost. How wonderful, right?
Gee.
Well, Surgeon Vice Admiral Anupam Kumar praised IIT Madras for developing products with the heart and highlighted a new ICMR-approved center for advanced research that will work with IIT Madras to medically validate and certify these particular innovations when they happen. He emphasized that true independence means inclusion, dignity and self-reliance for all. Well, as per WHO, nearly 1.9 billion people live with some form of disability, a number expected to rise to 2.5 billion by 2058. So the other update that I have, it is from Bengaluru listeners. Karnataka Council Chairman Basavraj Horati will participate in the legislative summit to be held in Boston in US from August 4th to 6th. The three-day summit will feature conferences, seminars and discussions on topics including the role of legislative assemblies in strengthening democracy, non-partisan management of legislative assemblies and financial autonomy for legislative assemblies. Over 15,000 people, including political leaders and policymakers from across the world, will participate in the program. The chairman will address the conferences on the role of the legislature in the development of the country. He also said that positive changes can be expected by adopting the discussions in the brainstorming sessions held in the summit. Next update, it is from Hyderabad. We are heading to Hyderabad now. The Telangana government has confirmed 566 Mandal Parishad presidents and Zilla Parishad territorial constituency seats and 5,773 Mandal Parishad territorial constituencies seats for the upcoming local body elections. There are 12,778 Gram Panchayats and around 1.12 lakh wards across the state. Following High Court directions to complete elections by September 30, Director of Panchayat, Raj G. Srijan, has instructed officials to begin preparations immediately. So these were the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Over to you, Devendra, now for Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल जनसेवा केंद्र का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनसेवा केंद्र ग्रामीण भारत को सशक्त बना रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देशभर में 4 लाख से ज्यादा जनसेवा केंद्र चल रहे हैं जो गांव गांव में लोगों को सरकारी सेवाएं, डिजिटल सुविधाएं और नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक उद्धरण को याद करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया का सपना ग्रामीण भारत के जरिए ही पूरा होगा। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज ने नशा मुक्ति अभियान पर कल एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के जिलाधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और इस क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। बैठक में मंत्री ने नशे के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए नशे की बिक्री के स्थानों पर बीट अफसर की जवाबदेही तय करने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र भी लिखा। श्री रविन्द्र इंद्राज ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, पुलिस और जन सहयोग से अपने परिसर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रयास करें। मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव उच्च शिक्षा डॉ सुनील बर्नवाल ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यक्रम द्वारा समर्थित इस केंद्र का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान, नवाचार और अंतः विषय सहयोग का केंद्र विकसित करना है। ये विशेष रूप से कृत्रिम मेधा के माध्यम से महिला स्वास्थ्य को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मध्य रेलवे ने कल मुंबई मंडल के 6 हेरिटेज स्टेशनों का शताब्दी समारोह आयोजित किया। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, रे रोड, आसनगांव, वासिंद, कसारा और इगतपुरी स्टेशन शामिल हैं। स्टेशन महोत्सव के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एक हेरिटेज प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे युग से संबंधित विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि सरकार मुंबई में परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में भीड़ कम करने के उपाय सुझाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। श्री सरनाईक ने राज्य विधानसभा को यह भी बताया कि ट्रेनों में भीड़ कम करने के उपाय खोजने के लिए रेलवे के साथ एक बैठक हुई है। और शगुन, हम सभी जानते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन्स, और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रोज जो मूव करने वाले लोग हैं, तो उनको बेहतर करना निश्चित तौर पर लोगों की, मुझे लगता है, अपेक्षाएं होंगी जिनको सरकार पूरा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार जल परिवहन, पॉड टैक्सी और रोपवे जैसे वैकल्पिक परिवहन विकल्पों पर विचार कर रही है। और कोलकाता चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 2026 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त मतदाता सूची की मांग तेज कर दी है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर मतदाता सूची में रोहिंग्याओं के नाम शामिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाता सूची में किसी भी तरह की हेराफेरी के खिलाफ चेतावनी दी। इस मुद्दे ने भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव को तेज कर दिया है तथा पहचान और नागरिकता अब प्रमुख चुनावी विषय बनकर उभर रहे हैं। और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। मॉनसून का समय चल रहा है और मॉनसून के दौरान इस समय कई राज्यों में अच्छी बरसात हो रही है, लेकिन शगुन अभी कुछ राज्यों में लोगों को मॉनसून से शिकायतें बनी हुई हैं।
या आई थिंक सो ऑफ कोर्स। एंड वन मोर थिंग दैट वी वुड लाइक टू रिमाइंड आवर लिसनर्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कैरी अम्ब्रेला विद यू। ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट इन एनी केस, आई मीन इवन इफ इट रेन्स और नॉट रेन्स, आई मीन इट्स बेटर टू बी,
बिल्कुल मॉनसून सीजन है तो अपने साथ एक छाता जरूर रखें,
जो भी इफ यू प्रेफर,
हां, और जो भी एहतियात हो सकता है बरतते रहे। जी, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज संभावना यह है कि मौसम विभाग के अनुसार कि बादल छाए रहेंगे और बरसात भी हो सकती है, तो और इसके चलते टेम्परेचर में गिरावट हुई है। दिन का तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है बारिश और बादलों के कारण, तो बहुत अच्छी खबर है, मौसम सुहाना रहेगा। 24 डिग्री सुबह तापमान दर्ज किया गया था। और मुंबई में मॉनसून के बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने के आसार देश की आर्थिक राजधानी में भी हैं। न्यूनतम तापमान 26, अधिकतम 33 डिग्री रहने की संभावना है और सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता में भी आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और शगुन बताएंगी चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम।
It's almost the same, I would say, in Chennai also. In Chennai, it is expected to have a generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature, it was 28 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru, talking about it now, it is also expected to have generally cloudy sky and there is a possibility of heavy rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum it will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky again. And there is a possibility of one or two spells of rain or thunder showers here as well. The temperature will hover between minimum of 24 degrees and maximum of 32 degrees Celsius.
जी, तो बारिश अगर ठीक से होती रहे, सामान्य रूप से होती रहे, तो मुझे लगता है कि खेती और किसानी के लिए फायदा होता है और आम लोगों को भी बहुत सुकून मिलता है। जो ongoing summer season है या गर्मी है,
heat wave,
उससे तो खैर राहत मिल चुकी है, लेकिन अब ह्यूमिडिटी है, जहां पर बारिश नहीं होगी वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती। तो बरसात की रिमझिम फुहारें, सावन का महीना चल रहा है, गिरती रहे और मौसम सुहाना बना रहे। आगे बढ़ते हैं जी कार्यक्रम में, आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हैं।
यस, फर्स्ट देवेंद्र, आई वुड लाइक टू टेल आवर लिसनर्स दैट टुडे द वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस।
जी,
वेल, अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल्सो ह्यूमन डिग्निटी, मार्किंग द एनिवर्सरी ऑफ द रोम स्टैट्यूट दैट फाउंडेड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दिस डे इट हाईलाइट्स हाउ जस्टिस अंडरपिन्स पीस एंड ऑल्सो ह्यूमन राइट्स ग्लोबली।
जी, तो न्याय मिलना जरूरी है और न्याय का समय पर मिलना भी बहुत जरूरी है।
जी, यू आर राइट अबाउट दैट। ऑल्सो देयर इज अ शेयर्ड विजन अक्रॉस द कंट्री, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड स्टूडेंट डायलॉग्स, दे फ्यूल अ शेयर्ड विजन। जस्टिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस बट अ लिविंग रियलिटी।
राइट,
वी आर टेलिंग यू अबाउट दिस फैक्ट ऑल्सो, दिस रेजोनेट्स विद सो मेनी पीपल ऑल्सो। Now, I would like our listeners to imagine a scenario that world and all the objects in it, they have gone black and white, no colors at all. Well, this is how the world will look like, the world of texting without what? Without emojis, right?
जी, आज के समय में तो कुछ इसी तरह की कल्पना हो सकती है।
Yes, also today it's the World Emoji Day, a day to tribute to the a day which provides, you know, tributes to the tiny digital symbols that have transformed the way we communicate. Right?
मतलब कई बार होता है कि हमारे पास शब्द नहीं होते हैं और एक इमोजी होता है, हमारी फीलिंग्स एक दूसरे तक पहुंचा देती है।
How wonderful, you put it really wonderfully. Also, I would also like to tell our listeners that this date, the July 17 date, was chosen, today's date, because it appears on the calendar emoji on most platforms. Originally linked to Apple's iCare launch in 2002, it has since become the unofficial birthday of the emoji and a global movement to recognize their cultural impact.
जी, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको हमेशा जो अच्छे इमोजी हैं, पॉजिटिव इमोजी हैं, वही भेजने का आपको मौका मिले और आप उसी तरह के इमोजी शेयर करते हैं और आपको भी लोग इसी तरह के कुछ खुश करने वाले इमोजी शेयर करें.
Perhaps if you haven't talked to a friend lately in a long time, you can send an emoji and then start a chat. Right.
आगे बढ़ते हैं और इतिहास की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं अपने श्रोताओं के लिए. आज के दिन 1850 में हॉवर्ड वेधशाला ने तारे का पहला चित्र लिया था.
राइट, इन द ईयर 1862 द यूएस सेकंड कॉन्फिस्केशन एक्ट पास्ड एंड इट डिक्लेयर्ड दैट स्लेव्स रीचिंग यूनियन लाइंस गेन्ड फ्रीडम.
जी, 1919 में फिनलैंड ने संविधान को अंगीकार किया था आज के दिन, और 1924 में ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव में मतदान अनिवार्य हुआ था, और 1929 में सोवियत संघ ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए थे.
Also, we are going a little back. In the year 1975, two superpowers, the US Apollo 18 and Soviet Soyuz 19 spacecraft met and docked in space for the first time. Now, if I talk about the year 1998, the Rome statue marked the creation of the International Criminal Court. It was adopted.
जी, और इससे कुछ साल पहले 1994 में धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति ग्रह से टकराया था. 1995 में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे.
वी आर गोइंग अ लिटिल बैक अगेन. इन 1948, वेल टुडे इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, द डे व्हेन वुमेन वर ऑफिशियली अलाउड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशंस फॉर ऑल पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग द आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस.
जी, वर्ष 2002 में रूस की स्वेतलाना फीफा प्रोवा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया यूरोपीय रिकॉर्ड कायम किया था, और 2006 में डिस्कवरी अंतरिक्षयान फ्लोरिडा के अंतरिक्ष केंद्र कैप कैनेवरल में अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर पृथ्वी पर सकुशल उतरा था.
Well, in the year 2019, World Health Organization declared the DR Congo Ebola outbreak a public health emergency of international concern.
जी, और अब स्मरण उन महान लोगों का जिनकी आज जन्मतिथि, पुण्यतिथि या जन्मदिन है, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग अपने कार्यों, विचारों से समाज को प्रेरित और प्रभावित करते हैं. और इस क्रम में सबसे पहले शगुन याद करते हैं भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है. कानन देवी एक प्रशिक्षित गायिका तो नहीं थी, लेकिन सिनेमा जगत में जिस दौर में वो सक्रिय थे, उन्होंने अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बनाया, और वो पहली बांग्ला कलाकार थी जिन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कानन देवी ने 10 वर्ष की उम्र में फिल्म जयदेव में काम किया. वर्ष 1934 में प्रदर्शित फिल्म माँ में बतौर अभिनेत्री कानन देवी ने काम किया, जो उनके सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई. अन्य प्रमुख फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुक्ति, जवाब, हॉस्पिटल, वनफूल, फैसला, आशा और राजलक्ष्मी आदि हैं.
Well, yes, she was among the early singing stars of Indian cinema, I should say, and is her singing style, it was usually in rapid tempo and was used instrumentally in some of the biggest hits of new theatres in Kolkata. Well, moving on, today, listeners, we are also remembering Indra Prasad Gordhanbhai Patel. Well, we also call him I.G. Patel. Indian economist and civil servant, he served as the 14th governor of the Reserve Bank of India. He was part of a stellar cast of Indian economists that chose to serve in government also in the initial decades after the Indian independence. His varied career includes stints as an economic advisor also and governor of Reserve Bank of India. I told you about that. He agreed with his peers that the main purpose of early Indian development planning should be to build a diversified industrial base rather than focus on a few exporting sectors. I was telling you about I.G. Patel, listeners.
जी. संगीत जगत के मनीषी लालमणि मिश्र का भी आज स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है. लालमणि मिश्र ने विचित्र वीणा की वादन तकनीक विकसित करने के साथ भारतीय संगीत वाद्यों के इतिहास और विकास क्रम पर अनुसंधान भी किया. वैदिक संगीत पर शोध करते हुए उन्होंने सामिक स्वर व्यवस्था का रहस्य सुलझाया. सामवेद के इन प्राप्त स्वरों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने राग सामेश्वरी का निर्माण किया. भरत मुनि द्वारा विधान की गई 22 श्रुतियों को मानव इतिहास में पहली बार डॉ. मिश्र द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र श्रुति वीणा पर एक साथ सुनना संभव हुआ. संगीत की हर विधा में पारंगत लालमणि मिश्रा ने अपनी साधना और शोध के बल पर एक अलग शैली का विकास किया, जिसे मिश्रवाणी के नाम से स्वीकार किया गया।
Now, let's talk about another musician. He's a saxophonist, band leader and composer, John William Coltrane. Today, we are remembering him. He has been among the most influential and acclaimed figures in the history of jazz and also 20th century music. He has worked in bebop and hard bop idioms early in his career, and he has been a pioneer to use the modes and was one of the players at the forefront of free jazz. I have chosen a specific instrumental piece, Listen In.
आज ही पुण्यतिथि है हिंदी सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुड़ी की। वो 1968 से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहीं। अपने 5 दशक के करियर में रीता भादुड़ी ने कभी हाँ कभी ना, क्या कहना, दिल विल, प्यार व्यार और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जैसी फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया। उन्होंने गुजराती फिल्मों में भी काम किया। 3 दशक लंबे करियर में रीता भादुड़ी 30 से ज्यादा टीवी धारावाहिकों के अलावा लगभग 70 फिल्मों में नजर आईं। उनकी चर्चित फिल्मों की अगर बात की जाए तो सावन को आने दो, विश्वनाथ, अनुरोध से लेकर हाल के वर्षों में क्या कहना और दिल विल प्यार व्यार जैसी फिल्में उनकी शामिल हैं। एक गाना उन पर फिल्माया गया, आइए सुनते हैं। Such a beautiful song, beautiful voice. We were talking about Rita Bhaduri. Let's talk about another musician now, Billie Holiday. We are remembering her, jazz and swing music singer. Well, she has been nicknamed Lady Day by her friend and also music partner who worked with her, Lester Young. She made a significant contributions to jazz and also pop singing. Well, her collaboration with the producer, Teddy Wilson, produced the hit What a Little Moonlight Can Do. This became a jazz standard. You're listening to it, listeners, right now. आइए नमन करते हैं परमवीर चक्र विजेता वीर जवान निर्मलजीत सिंह शेखों को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये सम्मान उन्हें 1971 में मरणोपरांत मिला। भारतीय वायुसेना से परमवीर चक्र के एकमात्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों ने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए उस युद्ध में वीरगति पाई जिसमें भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान से टूटकर उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बना। युद्ध के दौरान निर्मलजीत सिंह श्रीनगर वायुसेना के अड्डे पर तैनात थे। नेट हवाई जहाजों पर करिश्मे के लिए निर्मलजीत सिंह उस्ताद माने जाते थे। नमन है ऐसे वीरों को।
Well, we salute the brave heart for his sublime heroism, supreme gallantry and flying skills and determination above and all beyond the call of duty.
जी, और आज ही पुण्यतिथि है रजत मुखर्जी की। वे प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक थे जो मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहे। हिंदी सिनेमा में रजत मुखर्जी कई बेहतरीन फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, जिनमें प्यार तूने क्या किया, लव इन नेपाल और रोड जैसी फिल्में शामिल हैं। रजत मुखर्जी ने राम गोपाल वर्मा के साथ मिलकर प्यार तूने क्या किया फिल्म को निर्देशित किया था और वहीं से अपने सिनेमा करियर की शुरुआत की थी। और श्रोताओं, अब चाहेंगे अनुमति दीजिए, लेकिन आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।